buenos días.
William Shakespeare's play, The Life of King Henry V, includes a nighttime scene in the camp of English soldiers at Agincourt, just before their battle with the French army. In the dim light and partially disguised, King Henry wanders unrecognized
among the और क्योंकि वह नहीं जानते थे कि वह कौन था उन्होंने ईमानदारी से अपनी राय दी राजा के साथ अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने बातें की युद्ध में सैनिकों के साथ एक बिंदु पर राजा हेनरी बोला मैं सोचता हूं कि मैं किसी अन्य स्थान में मरने की तुलना में राजा की सेना में मरना अधिक पसंद करूंगा क्योंकि उसका उद्देश्य न्यायपूर्ण है माइकल विलियम्स ने जवाब दिया यह बात हमारी समझ के परे है उसका साथी समर्थन करता है हाँ और यह जितना हमने समझना चाहिए यह उसके अधिक है क्योंकि हमारे लिए यह जानना पर्याप्त है कि राजा के अधीन है यदि उसका उद्देश्य गलत है तो हम उसके लिए अपराधी नहीं हैं क्योंकि हम मात्र उसके आगे का पालन कर रहे हैं विलियम्स आगे कहता है यदि राजा का उद्देश्य सही नहीं है फिर इसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है राजा ही उन सब के लिए ये जिम्मेदार होगा इसमें कोई इशारा नहीं है कि राजा उनसे सहमत नहीं होता राजा के अधीन प्रत्येक व्यक्ति का राजा के प्रत्येक दायित्व होता है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के आत्मा के लिए जिम्मेदार है शेक्सपियर जब कार्य गलत होने लगते हैं तब दूसरों या परमेश्वर पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति होती है कभी कभी लोगों में देख रेख करने के अधिकार की अनुभूति महसूस होने लगती है और व्यक्ति या समूह अपनी देखरेख की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर या सरकार पर डालने का प्रयास करते हैं आतंकवादियों में कुछ मानते हैं कि पुरुष और स्त्रियों को व्यक्तिगत रूप से धार्मिक होने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम जैसे भी हमें बचाता है लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे उन्हीं दी गई नैतिक स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करें क्योंकि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के पापों को लिए जिम्मेदार होगा यह उसकी योजना और इच्छा के है कि हम अपने जीवन के नाट्य में निर्णय लेने की मुख्य भूमिका हमारी है परमेश्वर हमारे जीवनों पर नियंत्रण रखता और ना ही हमें अपनी कठपुतली बनाता है जैसा एक बार लूसीफर की योजना पेश की थी ना ही परमेश्वर के स्थान पर उसके भविष्यवक्ता अपने हाथों कठपुतली रचाने की कोई भूमिका स्वीकार करेंगे ब्रिगम यंग ने कहा था मैं चाहता क्योंकि इस संसार में और ना ही स्वर्ग में कोई अंतिम दिनों का संत जो मैं करता हूं उसे संतुष्ट हो जब तक कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा प्रकटीकरण की आत्मा उन्हें संतुष्टि ना दे मैं चाहता हूं वह समय जाने और समय समझे वैसे एक तो परमेश्वर में हमें उस अवस्था में नहीं बचाता जिसमें हम वर्तमान में हैं क्योंकि वर्तमान अवस्था में हम अशुद्ध हैं और कोई अशुद्ध वस्तु उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकती क्योंकि आदम की आभाषा में परमेश्वर का नाम पवित्रता से परिपूर्ण व्यक्ति है और उसके इकलौते पुत्र का नाम पवित्रता से परिपूर्ण व्यक्ति है और दूसरा परमेश्वर हमें वैसा नहीं बनाने के लिए कुछ नहीं करेगा जिसे हम अपने कार्यों द्वारा नहीं बनना चाहते हैं सच में वह हमें प्यार करता है और क्योंकि वह हमें प्यार करता है इसलिए वह ना तो बाध्य करता है और ना ही हमारा त्याग करता है असल में वह हमारी मदद और मार्गदर्शन करता है अवश्य है कि उसके प्रेम का वास्तविक प्रदर्शन उसकी आज्ञाएं हैं हमें परमेश्वर द्वारा स्थापित योजना में आनंदित होना चाहिए और हम होते भी हैं जो हमें अपने समय के लिए कार्य करने और उसके परिणामों का अनुभव करने की अनुमति देता है या जैसा धर्मशास्त्र इसे बताते हैं अनुचित कार्यों के परिणामों का अनुभव करना ताकि हम उचित कार्यों में के परिणामों के महत्व को समझ सकें हम आरंभिक पाप पर विजय पाने के लिए उद्धारकर्ता के हमेशा भारी हैं कि हम इस संसार में जन्म ले सके और फिर भी आदम का उल्लंघन के लिए दंडित ना किए जाए क्योंकि हम पतन से मुक्त किए गए हैं इसलिए हम अच्छे और बुरे के ज्ञान के साथ हमेशा के लिए स्वतंत्र के लिए गए हैं अपने स्वयं के प्रति कार्य करने के लिए और ना ही उसके कार्य करने जाने के लिए हम उस प्रकार का व्यक्ति बनने का चुनाव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं और परमेश्वर की सहायता से हम उसके सम्मान बन सकते हैं यीशु मसीह का सुसमाचार हमें बताना चाहता है कि उसके लिए अवसर उपलब्ध करता है यीशु मसीह के बलिदान और उसके अनुग्रह के द्वारा दिव्य व्यवस्था का पूरी तरह से और निरंतर पालन करने में हमें विफलताएं और को मिटाया जाता सकता है और हम मसीह समान चरित्र का विकास कर सकते हैं। हालांकि न्याय की मांग है, बिना हमारी सम्मति और भागीदारी के इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। पृथ्वी का शारीरिक रूप से हमारी उपस्थिति उस चुनाव का परिणाम है जो हमें पिता की योजना में भाग लेने के लिए किया गया था। इसलिए हमारा उद्धार निश्चित रूप से हमारी इच्छा का परिणाम नहीं है और ना ही मात्र दिव्य इच्छा के द्वारा हो सकता है। न्याय परमेश्वर का अति आवश्यक गुण है। हम परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वह पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है। धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर टेढ़े पथों पर नहीं चलता, ना ही दाएं मुड़ता है ना ही बाएं, और ना ही वह कहता है जिससे वह पलट जाए। इसलिए उसके पथ सीधे हैं और उसका मार्ग एक अनंत परिधि है और परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन वह हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हम विश्वास, साहस और आशा के लिए न्याय के दिव्य गुण पर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन परिपूर्ण न्याय संगत होते हुए भी कुछ बातें जो परमेश्वर नहीं कर सकता, वह कुछ को बचाने के लिए और अन्य को दंड देने के लिए पक्षपात नहीं कर सकता। वह पाप को थोड़ी मात्रा में भी स्वीकार नहीं कर सकता। ये दया के सिद्धांत को न्याय के सिद्धांत पर विजय पाने की अनुमति नहीं दे सकता। ये तथ्य कि परमेश्वर ने दया के सिद्धांत को स्थापित किया है एक प्रेरक प्रमाण है कि वह निष्पक्ष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह न्यायी है। इसलिए उसने हमारी अनंत नियति में मुख्य भूमिका अदा करने के लिए दया का मार्ग स्थापित किया। इसलिए अब न्याय उसकी सारी मांगों के अनुसार काम करता है और दया भी उस पर अपना अधिकार जताती है। हम जानते हैं कि उसके कष्टों और मृत्यु के लिए उसने पाप नहीं किया था। उसने और उसके पुत्र के उस लहू से पिता बहुत प्रसन्न था, क्योंकि जो कि बहा गया था, जो कि न्याय की मांग की पूर्ति करता, हमें दया और मुक्ति दिलाता है। फिर भी न्याय के अनुसार परीक्षा के इस समय में मनुष्य द्वारा बिना पश्चाताप किए केवल मुक्ति की योजना को अमल में नहीं लाया जा सकता। पश्चाताप के लिए यह एक आवश्यकता और एक अवसर है जो कि दया को बिना न्याय को कुचले कार्य करने की अनुमति देता है। लोगों को पक्षपातपूर्ण ढंग से बचाने के लिए मसीह नहीं मरा, उनके पश्चाताप के अवसर का प्रदान करने के लिए उसने जान दी थी। पश्चाताप की प्रक्रिया में हम पूर्ण रूप से उसके गुणों पर निर्भर होते हैं जो कि प्रचार में पराक्रमी है। लेकिन पश्चाताप के लिए कार्य करना स्वयं की इच्छा में परिवर्तन होना है, ताकि पश्चाताप का अनुग्रह का उपहार पाने की एक शर्त बनाते हुए परमेश्वर हमें समय की जिम्मेदारी कायम रखने के लिए योग्य बनाता है। पश्चाताप नैतिक स्वतंत्रता का आनंद, आदर और सामर्थ्य करता है और इस प्रकार दया न्याय की मांग को पूरा कर सकता है और सुरक्षा के शस्त्रों से उसे घेरता है। जबकि वह जो पश्चाताप के प्रति विश्वास नहीं बढ़ाता है, उसे न्याय की मांग के पूरे न्याय नियम के लिए उजागर कर दिया जाता है। इसलिए केवल उसके लिए मुक्ति की महान अनंत योजना है जो पश्चाताप के प्रति विश्वास करता है। परमेश्वर के न्याय और दया को गलत समझना एक बात है और परमेश्वर के अस्तित्व या सर्वोच्चता का इनकार करना अलग बात है, लेकिन दोनों के परिणाम स्वरूप हम कम सफलता प्राप्त करेंगे जितनी हमारी दिव्य योग्यता है, उससे बहुत ही कम। ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों से कुछ आशा नहीं करता, जो उस परमेश्वर के अस्तित्व में होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर को जो अपने बच्चों को संभालने और परिपूर्ण बनाने के लिए नैतिक व्यवस्था स्थापित करता है के बिना संसार, परम सत्य या न्याय के बिना संसार है। एक ऐसा संसार है जिसमें शास्त्र स्वीकार किया जाता है कि हर किसी के लिए सही और गलत अलग अलग है। सापेक्षतावाद का अर्थ प्रत्येक स्त्री और पुरुष अपना समय के उच्चतम अधिकारी हैं। अवश्य ही यह केवल वह नहीं है जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और सिद्धांत का अनुसरण और विश्वास करते हैं। बेशक बहुत से जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो भी विश्वास करते हैं कि वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते हैं कि क्या सही और गलत है। एक नौजवान ने इस तरह से इसे व्यक्त किया है, मैं नहीं सोचता कि मैं यह कह सकता हूं कि हिंदुत्व गलत है या कैथोलिक गलत है या एपिस्कोपलिक गलत है। मैं सोचता हूं कि यह केवल इस पर निर्भर करता है आप क्या विश्वास करते हैं। मैं नहीं सोचता कि सही और गलत होता है अन्य से उसके धार्मिक विश्वास के आधार के विषय में पूछा गया। उसका उत्तर था, मैं स्वयं में विश्वास करता हूँ, वास्तव में सारा निचोड़ यही है। मेरा मतलब है, तुम किस पर विश्वास करते हो, इसके लिए कोई और कैसे अधिकार रख सकता है? कोई आप पर बल डाल सकता है और कह सकता है कि तुम्हें इस पर विश्वास करने की जरूरत है, लेकिन आप अपने आप पर किसी में विश्वास करने के लिए बल नहीं डाल सकते। बल डालना चुनाव करना नहीं है। जो विश्वास करते हैं कुछ यह समय सच्चाई हो सकती है। कई संबंधी निश्चित और सर्वव्यापी सच्चाई की घोषणा बल द्वारा शासन करना लगता है। मुझे उस बात पर सच होने का विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उससे वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता। कृतत्व के नियमों का पसंद नहीं करना वाली गिरने से बच सकता यदि वह पहाड़ से छलांग लगाता है। ये सच्चाई अनंत व्यवस्था और न्याय के साथ भी है। स्वतंत्रता इसका विरोध करने से नहीं आती, लेकिन इसे लागू करने से आती है। यह परमेश्वर की समय की शक्ति का मूल आधार है। यदि यह स्थिर और अपरिवर्तनीय सच्चाइयों के लिए नहीं है तो चुनने का उपाय बेईमानी है, क्योंकि हम कभी भी अपने कार्यों के परिणामों पहले से देखने और विचार करने के योग्य नहीं हो सकते। संसार और आत्मिक दोनों विषयों में स्वयं के लिए जिम्मेदार होने का अवसर एक परमेश्वर से मिला उपहार है, जिसके अभाव में हम परमेश्वर की बेटियों और बेटों के रूप में अपनी पूर्ण शक्ति महसूस नहीं कर सकते। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्य दोनों ही जाते हैं, जिसका हमें निरंतर बचाव करना चाहिए। सृष्टि की रचना से पूर्व भी इस पर आक्रमण किया गया है। हमें व्यक्तियों और योजनाओं के विरुद्ध उत्तरदायित्व का बचाव करना चाहिए, जो कि कभी कभी उत्तम उद्देश्यों के चलते हमें उन पर आश्रित कर देता है और अपनी प्रतिभा, योग्यता और मसीह सम्मान चरित्र को विकसित करने के लिए आवश्यक कामों में हमें अपने समय को गलत झुकावों में इसे बचाना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी कही जाती है जो बस काम नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाए। उसकी सोच के अनुसार गिरजा या सरकार या दोनों पर उसे जीने का साधन देने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वह अपना करों और अपने दशमांश का भुगतान करता था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने समय की देखरेख के लिए काम करने से मना कर दिया। निराशा और असंतोष के कारण जिन्होंने उसकी मदद करने का प्रयास किया था, निश्चय किया, क्योंकि मैं समय को सहारा देने के लिए हाथ नहीं हिलाता, इसलिए उसे कब्रिस्तान ले जाकर छोड़ देते हैं और वहीं उसे मरने देते हैं। कब्रिस्तान ले जाते समय एक व्यक्ति बोला, मेरे पास कुछ मक्के हैं, क्या मैं उसे दे दूं? तो उसने उस व्यक्ति को समझाया जिसे वह ले जा रहे थे। उसने उसे पूछा, क्या मक्का छिली हुई है? उसने जवाब दिया, नहीं। तो फिर उसने कहा, ठीक है, मुझे कब्रिस्तान ही ले चलो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वतंत्र स्त्री और पुरुष बनकर सांसारिक और आत्मिक दोनों तरह से अपनी पूर्ण शक्ति का विकास करें, ताकि हम गरीबी के अपमानजनक बंधनों से और पाप के दासत्व से स्वतंत्र हो, ताकि हम आत्मसम्मान और आजादी का आनंद लें, ताकि हम उसके सेलेस्टियल राज्य की उन सब बातों में शामिल हो सकें जिसके लिए हम तैयार हो सकें। मैं इस असत्य विचार पर विश्वास नहीं करता कि हम अपने समय के प्रयासों में से प्राप्त कर सकते हैं बिना उसकी मजबूती और स्थायी सहायता के बिना। हम जानते हैं कि हम जो कर सकते हैं उन सबको करने के पश्चात भी हम उसके अनुग्रह द्वारा बचाए जाएंगे, और इससे पहले कि परमेश्वर मदद करे, हमें कुछ न्यूनतम स्तर की क्षमता या अच्छाई प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। दिव्य मदद प्रतिदिन प्रतिक्षण हमारी हो सकती है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज्ञाकारिता में हम अब कहाँ हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी मदद से अधिक हमें समय परिश्रम करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर का चुनाव करना चाहिए, ताकि वह हमारे जीवनों में न्याय और नैतिक स्वतंत्रता के अनुकूल कार्य कर सके। मेरी याचना मात्र जिम्मेदारी लेने और काम करने की है, ताकि परमेश्वर हमारे समय की इच्छाओं और प्रयासों को प्रयोग करते हुए हमारी सहायता कर सके। मैं गवाही देता हूँ कि परमेश्वर पिता जीवित है और उसका पुत्र यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, और कि पवित्र आत्मा हमारे साथ उपस्थित है। वे वास्तव में हमारी सहायता करना चाहते हैं, और ऐसा करने की उनकी क्षमता असीमित है। आओ हम जागें और धूल से उठें कि अनंत पिता के अनुबंध पूरे हो सके जिन्हें उसने तुम्हारे साथ बनाया है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।